आंखें तो लाल हुए जग में लव कुश कहलाए, सीता के तो लाल हुए जग में लव कुश कहलाए। आज उन्हीं दो बालक की भक्तों हम कथा सुनाए, जिन महलों के सुख न मिले फूल दोनों ही वन में खिले। लवकुश की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की चरम सीमा है। रामायण की रचना मुनि वाल्मीकि जी ने श्री राम के अवतार लेने से पहले ही कर दी थी, लेकिन लवकुश की कथा वो लवकुश को देखकर लिखना चाहते थे। इसके लिए ऋषि वाल्मीकि जी ने योग से अपनी उम्र बढ़ाई और लवकुश के जन्म की प्रतीक्षा करते रहे। लवकुश आदि शक्ति जगदम्बा मां सीता और परमपिता परमेश्वर विष्णु के अवतार श्री राम की लीलाओं की अंतिम कड़ी थे, जिनके कारण मां सीता की गरिमा को सारा जग जान सका। राम राज्य का अर्थ रघुकुल की मर्यादा और राम का आदर्श आज इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है। पिता और पुत्र के जन्म में परिस्थितियों का जो अंतर आया वो नारायण की लीला का शेष भाग था। श्री रामचंद्र का जन्म हुआ राजा दशरथ के आंगन में। जब राम हुए राजा तो उनके जन्म लिए बेटे वन में। श्री रामचंद्र की माँ कौशल्या राजमहल की रानी थी। लवकुश की माता जनक लली दुख की मारी जंगल में थी। हो ईश्वर तेरी माया को ज्ञानी भी जान न पाए, तेरी माया का जवाब नहीं, खिले कांटों में गुलाब यही।
तेरी माया का जवाब नहीं, खिले कांटों में गुलाब यही।
पिता और पुत्र के जन्म की परिस्थितियों में इतना बड़ा अंतर, ये नारायण की लीला थी या ईश्वर की माया या विधाता का कोई विधान था, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ना जान सके उसे साधारण प्राणी क्या समझेगा, किंतु उस समय ऐसा ही हुआ। इतना तो सत्य है, राम राज्य में सुखों की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा सबके अधिकार एक समान थे, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था। प्रजा के हित के लिए राजा कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता था। प्रिय भक्तों, इसीलिए उसे राम राज्य कहते थे। इसी राज मर्यादा के तहत एक बार राजा राम को ये बलिदान भी देना पड़ा।
पत्नी से धोबी ने एक दिन कुछ ऐसी बात कही, कल मुही नहीं आई कल क्यों किसके घर सारी रात रही। तेरे जैसी उल्टा नारी का मेरे घर कुछ काम नहीं, पर घर से आई को रख लूं मैं कोई राजा राम नहीं। हो के कलंकित क्यों मेरे माथे पे कलंक लगाए, वो तो राजा है जो चाहे करे, हम अपने समाज से डरे।
राजा राम का दरबार लगा था, राम के गुप्तचर, प्रतिदिन शाम को अवध नगर का समाचार राजा को लाकर देते थे। उस दिन भी एक गुप्तचर आया और उसने जो समाचार सुनाया उससे पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा राम स्वयं अवाक रह गए। गुप्तचर ने धोबी द्वारा कही हुई सारी बातें श्री राम को विस्तार पूर्वक बता दी। राजा राम सकते में आ गए। रघुकुल की मर्यादा पर आंच आ रही थी, सीता जी के चरित्र पर संदेह किया जा रहा था। राजा राम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि प्रजा के मन की शंका कैसे मिटाई जाए। उन्होंने दरबार समाप्त किया और उठकर अपने महल में चले गए। मन ग्लानि और क्षोभ से भर गया था, आंखों से आंसू निकल पड़े थे।
दशरथ नंदन का मन रोया लेकिन आंखें न रो पाई। मन के घावों को देख रही लेकिन जल से न धो पाई। उठ गए सभा से रामचंद्र, जाके खो गए विचारों में। जीना इतना आसान नहीं, चलना होगा अंगारों पे। हो हर पग पर फूल नहीं मिलते, कांटे भी पथ में आए। ये आंधी जो अवध में चली, राजा राम ये परीक्षा है तेरी।
ये आंधी जो अवध में चली, राजा राम ये परीक्षा है तेरी।
राम विचारों के भंवर में फंस गए। हृदय पर गहरी चिंताओं का बोझ बढ़ता गया। सीता उनकी व्याहता है, उन्हें प्राणों की तरह प्रिय है। उसकी पामनता को वो अच्छी तरह जानते हैं, किंतु आज जो अवध के लोगों ने मां समान सीता के चरित्र पर संदेह की उंगली उठा दी है, उसका क्या उपचार है। राम के मन में अथाह पीड़ा थी, किंतु राम अपने आदर्शों में बंधे थे।
जो अग्नि परीक्षा से गुजरी वो कितनी पावन सीता है। सीता के तप बल पर मैंने रावण की लंका जीता है। उसके सतीत्व की गरिमा को पहचान न पाए जगवाले। जगवालों पर विश्वास नहीं, ये कब किसको क्या कह डाले। ओ जिनके मन मैले होते हैं वो सच को जान न पाए। राजा राम के विचारियों चले, किस राह पे विधाता हम चले।
राजा राम के विचार यूं चले, किस राह पे विधाता हम चले।
बहुत सोचने विचारने के बाद राम जी ने निर्णय लिया कि सीता का त्याग कर देना ही उचित होगा। उसे अवध के राजमहल से निष्कासित कर वनवास के लिए भेज दिया जाए। भक्तों, भगवान राम राज मर्यादा का पालन कर रहे थे। उन्होंने अवश्य सोचा होगा कि उनकी पत्नी सीता इस समय गर्भवती है, वन में रहकर पुत्र को जन्म देगी तथा प्रजा के मन का मैल दूर होते ही मैं स्वयं सीता को राजमहल में वापस बुला लूंगा। राजा राम ने उसी समय लक्ष्मण को बुलवाया और सीता के चरित्र पर लगे हुए कलंक और अपने निर्णय से अवगत कराया।
प्रिय लखन तुम्हारी भाभी पर सबने आरोप लगाया है। लंका में रहकर आई है, मैंने उसको अपनाया है। ये राम राज्य पर है कलंक, ये दाग मेरे आदर्शों पर। ये दाग सिया के आंचल का काला कलंक है रघुकुल पर। हो रघुकुल की मर्यादा के हित सीता को त्यागा जाए, जब शक है सभी के मन में, जाओ छोड़ दो सिया को वन में।
बड़े भाई द्वारा सीता का त्याग और अपने द्वारा वन में ले जाकर उन्हें छोड़ आने की बात सुनकर लक्ष्मण सन्न रह गए, उनका ज्ञान शून्य हो गया। लक्ष्मण में समझने की शक्ति नहीं थी कि भैया क्या कह रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी विनम्रता से उन्होंने बड़े भाई राम से कहा,
मैंने छाती पर शक्ति सही मारा है मेघनाथ योद्धा, अपनी बेटी विधवा कर दी लंका में सबने है देखा। जिस माँ के लिए तुम्हारे संग वन में घूमा मारा मारा, उस माँ को त्याग रहे हो तुम जिस पर इतराए कुल सारा। हो ये निर्णय राजा राम लिए या मेरा बंधु सुनाए, भैया इतने कठोर न बनो, मैया सीता पर दया करो।
मैया इतने कठोर न बनो, मैया सीता पर दया करो।
राम स्वयं दुखी थे, ये निर्णय उनका अपना नहीं उनके आदर्शों का था, रघुकुल की मर्यादा का था। राम का ये त्याग राम के लिए ही हृदय विदारक था, किंतु अपनी पीड़ाओं को छिपाकर लक्ष्मण की पीड़ाओं का अनुभव किया राम लक्ष्मण के हृदय की गहराई को समझ रहे थे। बड़े स्नेह से लक्ष्मण को समझाया, प्रिय लखन, सिंहासन पर बैठने वाले को सिंहासन में लगी कील और मुकुट की चुभन को बर्दाश्त करना पड़ता है। यदि मैं प्रजा को दबाने की कोशिश करूंगा तो मेरे आदर्शों की गरिमा मर जाएगी, फिर ये राम राज्य नहीं असुरों का राज्य कहा जाएगा। हमें प्रजा के विचारों का सम्मान करना चाहिए, इस समय सीता का त्याग ही उचित है। राम ने बहुत समझाया, किंतु लक्ष्मण ने राम की इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। राम अब क्या करते, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था राजभय। राम मन में सोचते हैं कि राजभय से ही लक्ष्मण मान सकता है, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन शेषावतार कभी नहीं करेंगे।
हे लखन तुम्हारे बंधु राम तुमको आदेश नहीं देते, ये राजधर्म की आज्ञा है, राजा आदेश तुम्हें देते। राज आज्ञा का पालन करिए वरना दोषी कहलाओगे, तुम राजद्रोह करके लक्ष्मण एक अपराधी बन जाओगे। ओ, सीता को वन में ले जाओ, राजा आदेश सुनाए, राजा राम जिए कह के चले, भाई लक्ष्मण के आंसू निकले।
राजा राम जिए कह के चले, भाई
राजा ने एक सेवक को आदेश दिया, ठीक भी है, राजा का कोई स्वामी नहीं होता, स्वामी हर हाल में हमेशा सही होता है, उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है। लक्ष्मण के सामने उस आज्ञा को मानने के सिवा अब कोई विकल्प नहीं था। अब तो ये आदेश भाई का नहीं, ये तो राजाज्ञा थी। लक्ष्मण ने राम के सामने सिर झुका दिया। लक्ष्मण की आंखों से बहते हुए आंसुओं को राम ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और सीता के महल की ओर चले गए। लक्ष्मण अपने महल की तरफ आए और रथ को सजाने लगे। उधर श्री राम सीता जी से कह रहे हैं, सीते तुम बहुत दिनों से कहती थी ना कि मुझे ऋषि मुनियों के दर्शन करने हैं, प्रिय मैं राज कार्यों में बहुत व्यस्त हूं, अनुज लखन को कह दिया है वो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में लेने आएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सीता जी अपने स्वामी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और मन में अपने स्वामी की प्रशंसा करने लगी। मन ही मन मुदित हुई सीता कितने अच्छे हैं प्रभु मेरे, मेरा कितना है ध्यान इन्हें कितने हित चिंतक ये मेरे, निश्चल नारी को ज्ञान नहीं सच नहीं कह रहे हैं भगवन, जन्मों का टूट रहा रिश्ता सीता को भेज रहे हैं वन। हो रथ लेकर तेवर लक्ष्मण जी सीता के द्वारे आए, सीता मैया को बिठाए रथ में, राज महलों से चली वन में,
सीता मैया को बिठाए रथ में, राज महलों से चली वन में।
इसे विधाता का विधान कही या प्रभु की माया, पल भर में क्या से क्या हो गया, कितना बड़ा पहाड़ रखा होगा राम ने अपनी छाती पर ये दुख बर्दाश्त करने के लिए, किससे कहते वो अपनी पीड़ा, आदर्शों की रक्षा के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़ता है, किंतु राम ने उफ तक नहीं की। राजा राम की स्थिति ऐसी ही थी, उधर रथ चला जा रहा था, रास्ते भर लक्ष्मण मौन रहे। सुबह की पहली किरण के साथ रथ घने जंगल में पहुंचा। रथ को एक जगह रोककर लक्ष्मण जी नीचे उतरे और सीता जी को उतरने का संकेत करते हुए मुंह फेर कर हिचकियां लेने लगे। से नीचे उतरी सीता हिचकी ले लेकर रो पड़े लखन, देवी समान भाभी मेरी भैया ने इनको क्यों दिया है वन, मर गया न मैं क्यों लंका में क्यों वापस मुझे मिला जीवन, किस मुंह से कहूं सिया माते तुमको त्यागे है रघुनंदन, हो मैं तुम्हें छोड़ने वन आया हूं कैसे तुम्हें बताए, बड़े दुख से लखन जी कहे भैया राम तुम्हें त्याग दिए। लक्ष्मण को जितना दुख था उतना ही राजाज्ञा पर क्रोध भी। आज उन्होंने सिया भाभी से ये नहीं कहा कि तुम्हें भैया त्याग रहे हैं, बल्कि आदेशानुसार राम त्याग रहे हैं, यही सीता जी से कहा। आज लक्ष्मण के मन में अथाह पीड़ा थी, कितने विवश थे लक्ष्मण, मन में सोच रहे थे जिस भाभी के लिए मैंने प्राणों का भी मोह नहीं किया। आज उसे असहाय इस घने जंगल में अकेले ही छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहाँ जाएंगी, अपने जीवन की रक्षा ये कैसे कर पाएंगी? मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता इनके लिए। हे ईश्वर, इन्हें मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी रक्षा करना। सीता जी ने लक्ष्मण की विवशता, मन की पीड़ा और मन में उठती ज्वालामुखी को समझा। अपने दुख की परवाह न करते हुए वो लक्ष्मण को समझाती है।
होनी कोई ना टाल सके, विधि का विधान है अटल लखन। यदि कर्मों में वन लिखा हुआ तो छूट जाएगा राजमहल। क्षत्रिय होकर तुम रोते हो, अपने कुल पर अभिमान करो। जिसने तुमको आदेश दिया उस राजा का सम्मान करो। हो स्वामी आज्ञा, प्रभु आज्ञा है, हम दोनों शीश झुकाएं। मेरा भाग्य ही लिखा वन में, कोई दुख नहीं करो मन में।
प्रिय लखन भैया, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, अब तुम कोई दुख मत करो। जो होता है वो अच्छा ही होता है, इसे ईश्वर की मर्जी ही समझो। जो भोगना लिखा है उसे भोगना ही होगा। अब तुम वापस अयोध्या चले जाओ, अपने भैया का ध्यान रखना, उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना। धन्य है सीता जी भक्तों, जिन्होंने नारी की गरिमा को साकार किया। लक्ष्मण ने भाभी को नमन किया, दोनों की आंखों में आंसू थे। रथ को लक्ष्मण ने अवध के रास्ते पर वापस मोड़ा, लेकिन ये क्या, घोड़ों ने चलने से इनकार कर दिया। वो घोड़े निर्जीव से लगने लगे, जैसे उनके प्राण सीता जी के पास ही रह गए हों।
घोड़े आगे पग धरे नहीं, रथ वापस लेकर चलते लखन। घोड़े पथ में रुक रुक जाते, चाबुक पर चाबुक करते सहन। रस्ते भर रोते रहे लखन, श्री राम रो रहे राजमहल। असहाय गर्भणी सीता संग रोते थे पशु पक्षी जंगल। हो जंगल में सीता सोच रही, प्रभु ये कैसे दिन आए। कहाँ जाऊं मैं अकेली वन में, डूब जाऊं मैं नदी के जल में।
भक्तों, प्राणी का स्वभाव है एक सीमा तक वो किसी चीज का हल ढूंढता है। जब सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई उपाय नहीं सूझता, तो वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है और चुपचाप बैठ जाता है। क्या राम ने नहीं सोचा होगा कि घने जंगलों में मेरी गर्भवती सीता का क्या होगा, कहां जाएगी वो? अवश्य सोचा होगा, किंतु कोई रास्ता नहीं था, उन्हें भी ईश्वर पर ही भरोसा था। दुख जो लिखा है वो सीता को वन में और मुझे महलों में रहकर भी भोगना ही पड़ेगा। आह प्रभु, कितनी पीड़ा रही होगी आपके मन में, साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे इस बात को। सीता जी उधर जंगल में रो रही थी। सीता जी जहां बैठी थी बिल्कुल पास ही वहां मुनि वाल्मीकि जी का आश्रम था। सीता जी के रोने की आवाज सुनकर वो बाहर आए और सीता जी को अपने साथ आश्रम में ले गए। आश्रम वासियों से वन देवी के नाम से उनका परिचय करवाया। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहने लगी।
सीता की रात अंधेरी थी, जीवन विपदाओं का सागर। महलों की रानी जंगल में दिन काट रही जोगन बन कर। पतझड़ के बाद बसंत आया, धीरे धीरे दिन बीत गए। खिलते फूलों में रंग आया, पेड़ों में पत्ते नए नए। हो सीता के लाल हुआ पैदा, मुनि वरलव नाम धराए। मैया सीता जी के नैना ढूरे, सिया राम जी को याद करें। सीते ये राम तेरा जीवन भर जलता जाएगा। यदि नहीं जलेगा राम तो जग में अंधियारा हो जाएगा। लोगों का है विश्वास राम, लोगों का है आदर्श राम। एकाकी जीवन पाया है, कितना करके संघर्ष राम। हो हम बंधे हुए आदर्शों में, तिल तिल कर जलते जाए। सारी रात ऐसे सोचते रहे, बीते पल राम खोजते रहे।
सारी रात
पाया इस जीवन में इतने संघर्षों के बाद, यही एकाकीपन। जग वालों ने यही कीमत चुकाई, जग वाले मुझे क्या देंगे, देना तो मुझे पड़ेगा। सारा जीवन जला देना होगा मुझे इस जग के उजाले के लिए। कर्म ही जीवन है, और कर्म की राह में सुख दुख के लिए कोई जगह नहीं होती। राम दुख को त्यागो और जीवन को संघर्षों में समाहित कर दो। अपने आप से कहते हुए करुणा सागर पीड़ाओं के महासागर को हृदय में समेटे, जन कल्याण की भावनाओं में डूब गए। उधर एक दिन वन में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सीता जी लव को वाल्मीकि जी के पास लिटाकर गंगा स्नान करने के लिए गई। मुनिवर रामायण लिखने में व्यस्त थे। सखियों के कहने पर लव को अपने साथ ले जाने के लिए वो वापस मुनि की कुटिया पर आई और चुपचाप लव को लेकर चली गई। मुनि का जब ध्यान टूटा तो देखा लव बिस्तर पर नहीं था। बड़ी उलझन में आ गए और सोचने लगे बच्चे को कहीं कोई जंगली जानवर ना उठा कर ले गया हो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सीता तो पहले से ही बहुत दुखी है, बच्चे को ना पाकर और भी दुखी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत लव जैसे एक बच्चे को बनाने का विचार किया।
मुनि वाल्मीकि कुश मंगवाए, बिस्तर पर कुश को फैलाए। पढ़ करके मंत्र छिड़कते, जल कुश बाल रूप धरता जाए। लव जैसा रूप रंग तन, सब कुश को एक बालक बना दिया। मंत्रों से उसमें प्राण दिया, बिस्तर पर बालक सुला दिया। हो कुश से जन्मा था वो बालक, मुनि कुश ही नाम धराए। प्रभु जैसा चाहे वैसा ही करे, उनकी माया कोई ना समझे।
प्रभु जैसा चाहे वैसा ही करे, उनकी माया कोई ना समझे।
वाल्मीकि जी बच्चे को खड़े होकर बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और सोच रहे थे कि बिल्कुल लव जैसा रूप है। अब सीता कुछ भी नहीं समझ पाएगी। अभी मुनिवर सोच ही रहे थे कि इतने में सीता जी लव को गोद में उठाए हुए वहां आ गई। लव के बिस्तर पर लव जैसा ही दूसरा बच्चा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उधर मुनि भी सीता की गोद में लव को देखकर हैरान रह गए। मुनिवर समझ गए ये प्रभु की माया है जो ऐसी घटना हुई। उन्होंने सीता को सारा हाल बताया और कहा इसे विधि का विधान ही समझो। अब कुश भी तुम्हारा ही बालक है। सीता जी ने कुश को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगी। मुनि को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चली गई। अब दो दो बालकों के साथ सीता जी के सुख दुख बटने लगे। वो बालक मुनि की देखरेख में और सीता के आंचल तले फलने फूलने लगे। मुनि वाल्मीकि की छाया थी, मैया सीता का आंचल था। लव कुश के लिए वो कुटिया ही एक सुंदर राज महल सा था। शेरों के बच्चों से लड़ते मुनि उन्हें पढ़ाया करते थे। सब रीति रिवाज धनुष विद्या मुनि उन्हें सिखाया करते थे। घोड़े चढ़ना संगीत कला रामायण गान सिखाए। लव कुश दोनों वन में पले, सीता मैया के दो दीप जले।
लव कुश दोनों वन में पले, सीता मैया के दो दीप जले।
लव कुश अपनी माँ का नाम वन देवी ही जानते थे। उन्हें अपने पिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आश्रम को ही वो अपना घर समझते थे। मुनि वाल्मीकि उनके अभिभावक थे। एक बार अवध में अकाल पड़ा। राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में देश के कोने कोने से ऋषि मुनि विद्वान पंडित साधु व संत आए। मुनि वाल्मीकि भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गए। बचपन की उत्सुकतावश लव कुश भी मुनि के साथ हो लिए।
एक बार अवध के ऊपर जब दुर्दिन का बादल मंडराया, बारिश न हुई अकाल पड़ा, घर घर में रोग शोक छाया। श्री राम किए तब अश्वमेध सोने की सीता बनवाए। अवधेश नगर में प्रथम बार लव कुश मुनिवर के संग आए। हो तब सी बच्चों के रूप राम के मन को बहुत लुभाए। जुड़े सिर पे जटाओं के बंधे, पीले पीले वस्त्र तन पे खिले।
जुड़े सिर पे जटाओं के बंधे, पीले पीले वस्त्र तन पे खिले।
छोटे छोटे ये दोनों भाई मंडप को घूम घूम कर देख रहे थे। सोने की बनी सीता को भी देखा, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि मूर्ति किसकी है। बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ पूरा नहीं समझा जाता। राम के सामने बड़ी समस्या थी। सीता जी थी नहीं, और अर्धांगिनी के लिए वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। विद्वानों के मत पर अर्धांगिनी स्वरूप सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाकर यज्ञ वेदी पर बिठा दिया गया। श्री रामचंद्र उन बालकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों को पास बुलाकर उनका नाम पूछा तो बच्चों ने अपना पूरा परिचय दिया। महाराज, हम दोनों भाइयों का नाम लव कुश है, हमारी माँ का नाम वन देवी है, मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं और आज उन्हीं के साथ ये यज्ञ देखने आए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा लव कुश, महाराज को रामायण गाकर सुनाओ। बच्चों ने मुनि को प्रणाम किया, आज्ञा का पालन करते हुए वीणा उठाई और रामायण का गुणगान करने लगे। मुनि वाल्मीकि के कहने पर लव कुश की वीणा झनकारे, दो तपसी बालक मोह लिए अवधेश नगर के मन सारे। जब भरी सभा में लव कुश ने सीता चरित्र का गान किया, श्री रामचंद्र की आंखों ने आंसू भर कर सम्मान किया। हो सब लोग जान की मैया के दुख में ही डूबे जाए, सभी लोगों के नैन बरसे, मैया सीता का चरित्र सुन के। लव कुश का रूप देखकर और वीणा की धुन सुनकर अवध नगर के सारे निवासी मोहित हो गए। जब सीता के चरित्र का गान शुरू किया तो श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सभा में एकत्रित हुए सभी लोग दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लव कुश ने सीता जी के जन्म से कथा का प्रारंभ किया। जिस तरह अकाल अवध में है उस तरह जनकपुर में भी था। श्री जनक राजा ने नंगे तन धरती को हल से जोता था, हल्के फालों से सीत बना उसमें से निकली थी सीता। अवधेश कुंवर ने सीता को फिर धनुष तोड़ करके जीता। हो सीता संग चारों बहनों को दशरथ जी बहु बनाए, पग सिया के अवध में पड़े, अन्न धन नित नगर बढ़े।
पग सिया के अवध में पड़े, अन्न धन नित नगर बढ़े।
चौदह वर्षों के लिए यहाँ जब रघुवर को वनवास हुआ, स्वामी से ये बिछोह सुन के सीता का हृदय उदास हुआ। सीता सोचे, मेरे स्वामी जंगल में कष्ट उठाएंगे, ये राजमहल के सारे सुख किस काम हमारे आएंगे। हो मैं भी उनके संग जाऊंगी, मेरे प्रभु जब बन जाए, नारी जन्म है स्वामी के लिए, पति बिन नारी जिए किस लिए।
श्री राम के चरणों के आगे महलों का वैभव धूल के समान था। सीता जी ने वो सब कुछ त्याग दिया और राम जी के साथ नंगे पांव वन में चली गई।
रावण लेकर के चला गया श्री रामचंद्र की प्रिय सीता। लक्ष्मण के संग जंगल जंगल श्री रामचंद्र ढूंढे सीता। रावण ने अहंकार करके सीता से बोला देख मुझे। सीता बोली मैं क्या देखूं, देखेंगे स्वामी राम तुझे। हो लंका में जब तक रही सिया उर में थे राम समाए। श्री राम जी का ध्यान किए सीता बरसों ही गुजार दिए।
श्री राम जी का ध्यान किए सीता बरसों गुजार दिए।
लंका के नगर निवासी थे वानर भालू सब साथी थे। सीता ने अग्नि परीक्षा दी सब देव ऋषि मुनि साक्षी थे। सीता की पावनता सबको श्री रामचंद्र ने दिखलाया। इस अवध नगर को सीता पर लेकिन विश्वास नहीं आया। सीता का त्याग किए रघुवर लक्ष्मण से वन भिजवाए। कैसे लोग अवध में बसे जिन्हें सती में भी दाग दिखे।
लवकुश ने जब अवध निवासियों को धिक्कारा, सीता की अग्नि परीक्षा का ध्यान कराया तो सारे लोगों के सिर शर्म से झुक गए। सभी लोग लवकुश से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सबके मन में अपराध का बोध छुपा था। सबकी आंखें गीली थी। सभी पश्चाताप की आग में जलने लगे। उनका मन व्याकुल हो उठा सीता से मिलकर उनसे क्षमा मांगने के लिए। लवकुश ने अपनी ओर से श्री राम जी से निवेदन किया। यदि वही राम है आप स्वयं सीता मैया के स्वामी हैं, इस अवध नगर के राजा हैं, सच्चाई के अनुगामी हैं। सीता जैसी नारी के लिए महाराज आपसे विनती है, उस अबला के संग न्याय करें जो वन में कांटे चुनती है। हो हम तो दो बालक तपसी है, जो ज्ञान था वही सुनाए। युग युग दिया राम का जले, ये रघुकुल फूले फले।
युग युग दिया राम का जले, ये रघुकुल फूले फले।
लवकुश ने बड़े ही विनम्र होकर श्री राम से सीता जी के कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना की। रघुकुल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। रामायण का गुणगान समाप्त करके श्री राम को प्रणाम किया। सभी नगर निवासियों को हाथ जोड़कर नमन किया और मंडप से निकलकर मुनि के साथ अपने आश्रम की ओर चल पड़े। राजा राम ने रोकने की बहुत कोशिश की किंतु वे बालक नहीं रुके। वन में एक दिन दोनों भाइयों ने खेलते खेलते एक घोड़े को देखा। घोड़ा बहुत सजा हुआ था, उस पर सोने का एक छत्र भी लगा था। दोनों ने उस घोड़े को पकड़ लिया। लवकुश जंगल में एक दिवस एक श्याम रंग का अश्व देखे। दौड़ के
के घोड़ा पकड़ लिया, घोड़े को बांध दिया जड़ से। शत्रुघ्न लिए सेना अपनी, वन में घोड़े को खोज रहे। लव कुश ने जब उनको देखा तो दोनों भाई सोच रहे, हो शायद ये घोड़े के स्वामी है, अश्व ढूंढने आए, भैया घोड़ा नहीं देंगे इनको, हम पालेंगे यहीं पे इसको।
दोनों भाई अभी सोच ही रहे थे कि शत्रुघ्न चलकर उनके पास आ गए और कहने लगे, बालको ये अश्वमेध का घोड़ा है, सम्राट रामचंद्र जी ने इसे छोड़ा है, तुम लोग इसे अपने यहां नहीं बांधो, इसे मुझे वापस कर दो। बच्चे जिद पर आ गए, घोड़ा देने से इनकार करने लगे। शत्रुघ्न ने एक बार फिर से कहा, हट मत करो बालको, इस घोड़े को छोड़ दो, यही अच्छा होगा। लव कुश फिर भी नहीं माने और कहने लगे कि क्या होगा, तुम्हें युद्ध करना है तो कर लो, हम तो ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न के समझाने पर भी जब बालक नहीं समझे तो दोनों के बीच संग्राम शुरू हो गया।
दोनों बालक लव कुश के संग शत्रुघ्न घोर संग्राम किए। लव कुश के बाण शत्रुघ्न की छाती में जा विश्राम किए। शत्रुघ्न लाल बेहोश हुए, योद्धा उनको वापस लाए। लक्ष्मण जी तब सेना लेकर लव कुश के संग लड़ने आए। हो लक्ष्मण के संग सुग्रीव और अंगद भी लड़ने आए। लव कुश उन्हें फूलों से दिखे, कैसे मारूं मैं बाण उन्हें।
लव कुश उन्हें फूलों से दिखे, कैसे मारूं मैं बाण उन्हें।
लक्ष्मण लड़ने के लिए बड़े तरकश से बाण नहीं निकले। लव कुश के तन पर लक्ष्मण के दो नैना बार बार फिसले। लव कुश बोले शेषावतार, क्या ज्ञान बुद्धि बल भूल गए। दासता राम की कर ली तो भाभी के रिश्ते भूल गए। हो धिक्कार है ऐसे देवर को जो भाभी वन छोड़ाए। लव कुश दोनों विष उगले, ये सुन के लखन उबले।
लव कुश और लक्ष्मण जी में घोर संग्राम हुआ। लव कुश के बाणों से लक्ष्मण धराशायी हो गए। उन्हें संभालने के लिए हनुमान जी रणभूमि में आए। जब उन्होंने उन बालकों को देखा तो देखते ही रह गए। उनका मन बालकों की तरफ खिंचता चला जा रहा था और वो ठगे से खड़े रहे।
राम भक्त अंजनी लाल रण में दो बालक को देखे। बचपन के राम याद आए, लव कुश को बार बार देखे। खो गए पवन सुत रूप देख, आंखों से अश्रु लगे बहने। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया हूँ इनसे लड़ने। हो ये मातसिया के बालक है, मेरा मन यही बताए बड़े भाग्य से ये मुझको मिले। मन कहता मैं लगा लूं गले,
बड़े भाग्य से ये मुझको मिले। मन कहता है लगा लूं गले।
राम भक्त हनुमान भला कैसे भूल कर सकते थे, उन्हें सीता मैया के बालकों को पहचानने में तो कोई चूक हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि माँ सीता और रामचंद्र जी तो सदा ही उनके हृदय में विराजमान रहते थे। हनुमान जी ने सोचा, क्यों ना मैं एक छोटे से वानर का रूप धारण कर लूं, मुझे देखकर ये बालक मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, मुझे इनके साथ खेलने का अवसर भी मिल जाएगा और इनके द्वारा मैं सीता मैया के दर्शन भी कर लूंगा। ये सोच हनुमान जी ने छोटे से वानर का रूप धारण किया। लवकुश उस वानर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, दौड़कर उन्होंने उस वानर को पकड़ लिया और खेलने के लिए कुटिया पर ले गए।
पकड़ कर खींच रहे कुछ लव, हंस हंस कर देख रहे पवन पुत्र हनुमान, मगन थे अपने मन में सोच रहे, यही कहीं पर मैया होगी उनको सन्मुख पाऊंगा, इन बच्चों के कारण फिर से माँ का दर्शन पाऊंगा। हो माँ सीता आ गई उसी पल, हनुमत सोच न पाए माँ के चरणों में हनुमत गिरे, सीता मैया के भी नैना ढूरे,
माँ के चरणों में हनुमत गिरे।
पवन पुत्र सीता माँ के चरणों में ही पड़े रहे, माँ ने उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। आंसुओं में हनुमान डूबे जा रहे थे, माँ का आंचल भीग रहा था। लवकुश दोनों भाई ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये भक्ति और प्रेम देखकर दसों दिशाएं भाव विभोर हो गईं। उधर रणभूमि में भरत और विभीषण युद्ध के लिए आ पहुंचे, लवकुश ने भी तुरंत अपना मोर्चा संभाला। भरत ने भी उन बालकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन
जब भरत लाल आए रण में भक्ति का ज्ञान देने लगे, जाकर के नंदी ग्राम बसो लवकुश भी उनको कहने लगे। जब वीर विभीषण टकराए तब दोनों भाई मुस्काए, लंकापति बनने की खातिर तुम अपना भाई मरवाए, भाभी को पत्नी बना लिया घर भेदी लंका ढाए, तुम जैसा भाई जिसको मिले काहे उसकी ना लंका जले।
तुम जैसा भाई जिसको मिले काहे उसकी ना लंका जले।
युद्ध में भरत और विभीषण भी लवकुश से हार गए। अब श्री रामचंद्र जी स्वयं युद्ध भूमि में आ गए, उनका आना सुनकर मुनि वाल्मीकि जी घबरा गए, सोचने लगे पिता और पुत्रों के बीच यदि संग्राम हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, मैंने लवकुश के जन्म की प्रतीक्षा, रघुकुल की मर्यादा और राम के आदर्शों को युगों युगों बढ़ाने के लिए की थी। यदि ये युद्ध हुआ तो बहुत बुरा होगा। मुनिवर तुरंत रणभूमि की तरफ चल पड़े।
मुनि वाल्मीकि नंगे पग ही दौड़े दौड़े रण में आए। सीता दौड़ी हनुमत दौड़े श्री राम जहां पर थे आए। मुनि वाल्मीकि जी समझाए बोले नारायण बस कर दो। लीलाधारी इस लीला को अब इसी भूमि में गत कर दो। हो ये लव कुश पुत्र तुम्हारे हैं मुनि वाल्मीकि बतलाए श्री राम के जो बाण निकले वो चले गए धरती तले।
रामचंद्र जी ने धनुष को धरती पर रखा और दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। सीता जी ने राम को नमन किया और एक कोने में खड़ी हो गई। रामचंद्र जी की आंखें भर आईं, सीता से कहने लगे, प्रिय जो दुख की घड़ियां थी वो सब बीत चुकी हैं। तुम्हें जो कुछ भोगना था वो सब भोग लिया। अब मेरे साथ अयोध्या चलो। तो सीता जी ने कहा,
अब क्या मुँह लेकर जाऊंगी फिर से अपनी ससुराल अवध। बदनाम हो चुकी हूं इतनी अपमान सहाना जाए अब। कैसा कलंक फिर लगे कोई आंचल धूमिल हो जाए कब। हे माँ धरती यदि सती हूँ मैं तो मुझे गोद में ले लो अब। हो सीता धरती में समा गई रघुनंदन अश्रु बहाए। लव कुश दोनों बेटों को लिए राम अवध नगर को चले।
लव कुश दोनों बेटों को लिए राम अवध नगर को चले।
सीता माँ को धरती में समाते देख चारों तरफ हाहाकार मच गया। लव कुश वही धरती पर लेट गए अपनी माँ को ढूंढने लगे। अपनी उस माँ को पुकारने लगे जिसने इतने दुख सहकर इतने लाड प्यार से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। पल में ही देखते देखते वो माँ उनकी आंखों से ओझल हो गई। उधर राजा राम भी ये सब देखकर विचलित हो गए। सीता सीता कहकर पुकारने लगे। विलाप करते दोनों बालकों को और इस दुख से बोझिल हुए राम को वाल्मीकि जी समझाने लगे, नारायण अब लव कुश को अयोध्या ले जाओ और इनका राज तिलक करो। आपके सारे कार्य पूरे हो गए हैं। अब आपको भी अपनी सारी लीला समेटनी होगी। सीता जी वैकुंठ लोक में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये संसार जब तक रहेगा आपका गुणगान करता रहेगा। श्री रामचंद्र जी दोनों बेटों को लेकर अयोध्या की ओर चल दिए।
सीता नारी की गरिमा है संसार कभी ना जान पाता। आदर्श न होता रघुवर का रघुकुल की न होती मर्यादा। श्री रामचंद्र का राम राज ये दुनिया समझ नहीं पाती। मुनि वाल्मीकि की रामायण आदि की आदि रह जाती। हो लव कुश के कारण सिर ऊंचा कर सकी आज माताएं, सुत लव कुश सबको मिले, कुल दीपक बन के जले।
सुत लव कुश